نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج خاصا لیٹ ہو گیا. وہ ایک زمانے میں جب یہ سنتے تھے کسی سے کہ دنیا اور روحانیت اکٹھے لے کے چلنا بڑا دشوار ہے, تو اب اگر سچائی سے بات کی جائے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے, اور اگر مہذب طریقے سے کہا جائے تو یقین نہیں آتا تھا. یہ جو گفتگو کا فن ہے, اس میں انسان مشکل سے مشکل بات بڑے خوبصورت انداز میں کہہ جاتا, پتہ نہیں چلتا. ایک بار ایک بہت بڑے مشہور شاعر نے واقعہ بیان کیا کہ جنرل ضیاء صاحب عام طور پہ بلاتے تھے کبھی صحافیوں کو, کبھی ادیبوں کو, کبھی شاعروں کو. وہ اور بات ہے کہ فوجی ہونے کے ناطے شعر سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے, تو شاعروں کو بلایا ہوا تھا. تو سب لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے, تعارف ہو رہا تھا. تو ایک بزرگ شاعر کے پاس صدر صاحب آئے, ان سے تعارف ہوا. تو صدر صاحب نے اخلاقاً ان سے پوچھا کہ کہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے, صحت ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے جی اللہ کا بہت احسان ہے. تو جب صدر صاحب اگلے شاعر سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ عقیدتاً کہا ہے, ورنہ صورتحال خاصی مختلف ہے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسے ہم آسان سمجھتے تھے, گرچہ دل میں ہم مذاق اڑاتے تھے کہ اس میں دشواری کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی تو بڑے شاہ صاحب جیسا مہربان انسان مل گیا, اور ہم وہاں بیٹھنے لگے. وہاں کچھ عنایات فرما دی انہوں نے, تو صورتحال یہ ہونے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ آدمی دل میں کچھ نہ کچھ ہر وقت پڑھتا ہی رہے. تو اگر آپ کو دل میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ مخاطب نہ ہو, اور پھر یہ ہونے لگا کہ ہر وقت یہ خواہش رہنے لگی کہ میرے قریب بھی کوئی نہ آئے تاکہ میں نہ اس کو دیکھوں نہ میں ڈسٹرب ہوں. تو ٹورس پہ جاتے تھے, پہلے تو ڈرائیور میں بٹھا لیا کرتا تھا, پیچھے خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا. تو پھر ڈرائیور کو چھٹی دے دی کہ تم گھر کی ڈیوٹی کیا کرو, میں اکیلے چل جاؤں گا. اس لیے کہ تنہا ہوتا تھا کار میں تو بڑے اطمینان سے یا پڑھتا جاتا تھا. یا پھر ایک صاحب کی قیرت بڑی پسند تھی مجھے, شیخ ایوب صاحب. تو ان کی 27ویں رات کی جو قیرت ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ سنتا رہتا تھا. تو پرانی بات ہے بہت. تو انہی دنوں جی ٹی روڈ پر گجرانوالا سے پہلے ایک راولپنڈی بائی پاس کے نام سے نئی سڑک بنی, تو اس کا بھی افتتاح نہیں ہوا تھا. ہم نے سوچا یہ بن تو گئی ہے, ادھر سے گزر کے دیکھتے ہیں کیسی بنی سڑک, کہاں جا کے نکلے گی یہ. تو اسلام آباد جاتے جاتے گاڑی ادھر کو موڑ لی. تو اس زمانے میں وہ سڑک نئی نئی ابھی بنی تھی, مکمل ہوئے میرا خیال دو چار دن ہی ہوئے ہوں گے, آبادی تھی نہیں دونوں طرف, کوئی دور دور تک صرف کھیت ہی کھیت تھے. تو ایک پوائنٹ پر جا کے مجھے وہ جگہ بہت پسند آ گئی کہ دور دور تک کسی آبادی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا سڑک کے دونوں طرف. تو میں نے گاڑی نیچے اتار لی سڑک کے, دیکھنے لگا کہ کوئی آدمی مل جائے. تو اتنی دیر میں دیکھا کہ کافی فاصلے پہ کھیتوں میں دو آدمی کھڑے تھے. تو ان کی طرف چلا گیا, ان سے جا کے کہا کہ بھائی یہ زمینیں کن صاحب کی ہیں؟ کہ کہیے ہماری ہیں. تو میں نے کہا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں یا اس کے ارد گرد تھوڑا آپ مجھے دو کنال جگہ دے سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی کھیتوں کے اندر درمیان میں. میں نے کہا اسی جگہ چاہیے. تو سڑک سے یہاں تک کا جو پیسج ہے 10 فٹ کا, وہ کیلکولیٹ کر لیجئے کیا ایریا بنتا ہے, تو اس کے لیے پے کر دیتا ہوں میں. تو کہنے لگے آپ یہاں کیا کریں گے اتنی سی جگہ کا, اور وہ بھی سینٹر میں. تو بیوقوفوں کی طرح بجائے اس کے کہ میں کوئی بہانہ کر لیتا, सीधा कह दिया कि मैं यहाँ रहने का छोटा सा ठिकाना बनाना चाहता हूँ, दो कमरे का। तो कहने लगे क्या करेंगे यहाँ रह के? तो मैंने कह दिया कोई अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। अब ये हमाकत थी मेरी कि उनसे मैंने कह दिया कि अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से मेरा हुलिया देखा, तो सड़क के किनारे जो गाड़ी खड़ी थी उसको गौर से देखा, तो एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देख के, तो कहने लगे अगर इस मकसद के लिए चाहिए तो आप पेमेंट क्यों करते हैं? दो कैनाल आपको चाहिए ले लीजिए हमसे, तो इसी तरह हमें कुछ सवाब मिल जाएगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो मालूम यह होता है कि बज़ाहिर लगा यूं कि अल्लाह अल्लाह करने की खुशी हुई कि तन्हाई में बैठ कर अल्लाह अल्लाह कर लूँगा, लेकिन लगता यह है कि दर हकीकत खुशी इस बात की थी कि मुफ्त में ज़मीन हाथ आ रही थी। तो वापस जब आया लाहौर तो मैंने बड़ी खुशी से शाह साहब से अर्ज़ की कि ज़रूर वहाँ आपको लेके चलूँगा एक जगह, मैंने ज़मीन हासिल कर ली। पूछा कि कहाँ? तो मैंने कुछ उन्हें जनरल एरिया का आइडिया दे दिया कि इस जगह पर है। तो कहने लगे वहाँ क्या करोगे? तो मैंने कहा जी बैठ के तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करेंगे। अब मेरा ख्याल था कि अप्रिशिएट करेंगे कि वाह बड़ा अच्छा शागिर्द निकला मेरा, तो उल्टे जूते पड़ गए। कहा कि क्या करने लगे हो तुम? ये कौन सी बहादुरी है कि तुम एक कोने में जाके सब कुछ छोड़ के तो अल्लाह अल्लाह करो? ये तो कोई भी कर लेगा। कमाल तो ये है कि दुनिया में रहते हुए पूरी तरह से फिर अल्लाह की राह पर चलो। तो ये कुछ बात भी हुई। तो उस वक्त हमने कहा कि हजूर ये भी कौन सा कोई दुश्वार काम है, ये भी कर लेते। लेकिन अब आके ये अंदाजा होने लगा कि पहले लोग जो फरमा गए कि सबसे दुश्वार काम यह है कि एक हाथ में दुनिया और एक में दीन लेके चलना, और फिर इस तरह से कि दोनों यकसा रहें, कमी या ज्यादती ना आने पाए, ये वाकई नामुमकिन काम है। तो बात वहां चली थी कि मैं आज लेट हो गया आते आते। या तो मैं ज़हनी तौर पर यह मान नहीं रहा कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 साल की उम्र में जितना काम करता था उतना कर लूँ, कि बगैर तीन तीन चार चार रातें सोए दिनों का काम करके आराम से आके फिर बैठ के दुआ का सेशन भी भुगता दिया जाए। अब वो हो नहीं पाता। अब ये सिर्फ दो ही रातों का जागा हुआ था मैं और काम करता रहा था मुल्क से बाहर, तो आज हिम्मत जवाब दे गई। तो पता ही ये चला कि नहीं साहब अब नहीं, बुढ़ापा वाकई आ गया। तो मैं वो आज अपने थकन के हाथों मजबूर होके सुस्ती कर गया, तो यूं नहीं आप तक आ सका वक्त पर। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, सबको आपको इंतज़ार करना पड़ा है। ये तीन सवाल आए तो हैं, इनका मैं पहले सवाल दोहरा देता हूँ कि सवाल किसी साहब ने लिख के मुझे दिया है कि शैतानी हमजात से क्या मुराद है और उसकी तख्लीक की बजाय तस्मिया। पर इस सवाल का जवाब अर्ज करने से पहले एक गुजारिश मैं ये करूँ आपसे कि नफ्सियात में और दुनियावी दूसरे दुनियावी अलूम और मामलात इन सब में असबात की अहमियत बहुत है। साइकोलॉजी में तो कहा यह जाता है कि असबात ही पर सेहतमंद और तामीरी चीज़ें कायम हैं, और वो असबात खा इंसान के एटीट्यूड में हो, पॉजिटिव एटीट्यूड, या उसकी सोच पॉजिटिव थिंकिंग, और इसी तरह तनकीद भी जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से मुराद मेरी ये नहीं कि तारीफ की जाए, ऐसी तनकीद, ऐसा क्रिटिसिज्म जो इस नुक्ता नज़र से किया जाए कि मामला दुरुस्त हो जाए। तो साइकोलॉजी में तो असबात की बेपनाह अहमियत है। जो लोग किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल सेटबैक का शिकार हो जाते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट हजरात असबात ही की मशकें कराते हैं। एक्सरसाइज असबात ही की होती है। जिक्र में भी दो जरबें हैं जो दिल पर लगाई जाती हैं, असबात की और नफी की। उससे दिल को ट्रेन किया जाता है। लेकिन हैरानकुन तरीके पर इस्लाम में जब भी रब ताला ने कोई फोर्सफुल बात कही है, उसकी इब्तदा नफी से है, ला से की है। हत्ता के कुफ्र से इस्लाम में दाखला भी नफी से है। कलमे की इब्तदा भी ला से है। अपनी तमाम तर चीजों की इंसान पहले नफी करता है और फिर इकरार करता है नई चीजों का, जो बहरहाल मुस्बत हैं। इसी तरह जब कलमा हम पढ़ते हैं तो अपने पिछले तमाम अकायद की नफी कर देते हैं ला कहते हुए। नहीं है अल्लाह के सिवा कोई माबूद, तो इसके साथ ही नफी हो गई उन तमाम पत्थर के बुतों की, उन तमाम फिक्री बुतों की और उन तमाम सोच के बुतों की जो हमने अपने दिल में बिठा रखे हैं, और फिर उसकी जगह सिर्फ वादहू ला शरीक ने ले ली। अगर सिर्फ पत्थर के बुतों ही की नफी करना है तो इंसान मुसलमान तो हो जाएगा, मोमिन नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी बुनियादी चीज है। हो सकता है कि आप में से अक्सर लोग इस बात से इख्तलाफ करें मेरी, वो आपका हक है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक पत्थर के बुतों की नफी से मुसलमान तो हो जाएगा इंसान। पत्थर के बुतों की नफी और वादहू ला शरीक के वाहिद होने के इकरार के साथ, उसके वाहिद व आहद होने का इकरार करते ही मुसलमान तो हो जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करने के बाद। लेकिन मोमिन होने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच के बुतों की और अपने फिक्री बुतों की भी नफी कर दें, और अपनी सोच और अपनी फिक्र उसको अल्लाह के अहकामात की मातहत ले आए, तो मोमिन हो जाएगा इंसान। ये जिक्र अजकार क्या हैं? ये भी तो नफी है, इंसान की सोच की नफी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि तसव्वुफ में भी हम दिल पर ज़र्ब लगाते हैं, नफी की पहले लगाते हैं ज़र्ब, फिर असबात की ज़र्ब लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग हलके में बैठ के अगर कहीं किसी खानकाह पर जाने का आपको इत्तफाक हो गया हो, तो खानकाह से मुराद मज़ार नहीं मेरा, असल में एक दिन शायद पहले भी मैंने अर्ज किया था कि एक ज़माने में जब इस्लामी दुनिया में जबर बढ़ गया, जबर इस तरह से कि हुकूमती सोचें और इस्लाम की राहें, इनमें जब कुछ बोध आने लगा, जब फर्क आने लगा और ये दुश्वार हो गया कि आलिम हजरात उलेमा खुलेआम सच्ची बात हक की बात कह सकें। तो कमजोर लोगों ने बहरहाल हक का रास्ता नहीं छोड़ा, ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन इसलिए मैंने कमजोर लोग कहा कि वो कलमाए हक अलल एलान कहते या उसको सड़क पर कलमाए हक कहते, उन्होंने लोगों की तरबियत के लिए कि लोग किसी तरह से जो इस्लाम की असल रूह है उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें, तो दर्स व तदरीस और ट्रेनिंग का एक नया तरीका ईजाद कर लिया। और वो ये था खानकाही निज़ाम, कि वहाँ पे दर्स व तदरीस भी होती थी, इल्म भी पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, और साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी। और फिर वो इस तरह से लोग जो हक पर पूरी तरह चल रहे होते थे वो तैयार किए जाते थे, लेकिन वो महदूद पैमाने पर सिलसिला होता था। ये खानकाही निज़ाम, इसकी बुनियाद यूं पड़ी थी। बाद में बेशक ये हुआ कि ज़माने के साथ साथ ये बदलता चला गया, फिर ये तसव्वुफ का गढ़ बन गया, और उसके बाद फिर ऐसी मशकें कराई जाने लगी यहाँ पर जिनका ताल्लुक सिर्फ रूहानियत से होता था। वो वक्त के साथ साथ जैसे होता है एक फितरी अमल है, चीज़ें अपनी शक्ल बदलती चली गईं। लेकिन दर हकीकत खानकाही निज़ाम उस ज़माने में राइज हुआ था। तो मैं उसी खानकाही निज़ाम को जो अपनी असल शक्ल में था उसका हवाला दे रहा था। तो वैसी किसी खानकाह में अगर आप देखें तो एक हलका बना लिया जाता है और उसमें बावाज़ बुलंद जिक्र किया जाता है, तो जो उस्ताद होता है वो इब्तदा करता है, फिर सब उसको फॉलो करते हैं। तो कलमा मुबारक का जो पहला हिस्सा है, कलमा तैयबा का, पहले कलमे का, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जिक्र वो करते हैं। तो उसका जो हिस्सा है ला इलाहा, वो एक ज़र्ब है जो लगाई जाती है, इल्लल्लाह ये दूसरी ज़र्ब है। तो ला जब कहते हैं तो सांस लिया जा रहा होता अंदर, इनहेल करते हैं, इल्लल्लाह फोर्स के साथ कहा जाता है, वो ज़र्ब लगती है दिल पर, तो इसे ज़र्ब लगाना कहते हैं। तो उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ में भी एक नफी की ज़र्ब है और एक इस्बात की ज़र्ब है, अगरचे इसका एक असर बड़ा अजीब व गरीब आता है बाद में, वो ये है कि दिल कमज़ोर हो जाता है ज़र्ब लगने से। ये शायद बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, जब हम मुसलसल ज़र्ब लगाएंगे इसको तो दिल कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ नहीं लगाते इसको, एक ज़माने में किया लेकिन अब नहीं ये जिक्र करता मैं, किसी ज़माने में किया था। इसका एक और अमल भी है, हर नमाज के बाद 3 मर्तबा ज़र्ब लगा ली जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़र्ब लगा ले, इससे कमज़ोर नहीं होगा दिल लेकिन फायदा जरूर मिल जाएगा। अब अगर इसका फायदा जब मिलने लगे और आपका जी ये चाहे कि यह ऐशो इशरत और ये दुनिया की आसाइशें छोड़ दें, तो फिर मुझे बुरा भला मत कहिएगा, क्योंकि इसका अंजाम यही होगा कि आपके दिल से इन दुनियावी चीज़ों की सबकी मोहब्बत जाती रहेगी, तो फिर आप बैठ के मुझको कोसते रहेंगे बाजमात कि इस शख्स ने क्या खेल कर दिया हमारे साथ। तो इससे ये होता है कि ये नफी और असबात की जर्ब लगाने से दिल आपका खाली होने लगता है, खाली ईमान से नहीं, खाली दुनियावी चीजों से। तो चूंकि वैक्यूम कहीं रह नहीं सकता, तो जब ये आलाइशें दिल से निकल जाती हैं नफी की जर्ब लगाने से, तो फिर इसमें रब आके बैठ जाता है, क्योंकि रब इन आलाइशों के साथ कभी नहीं बैठेगा। तो दिल में फिर रब रहने लगता है, और जिस दिल में रब रहने लगता है वो फला पा जाती है, ठीक है। और शैतानी हमजाद अपना घर छोड़ के भाग लेता है, फिर नफ्स काबू में आ जाता है। ये दर हकीकत शैतानी हमजाद, ये इतनी लंबी बात घुमा के यूं की वकीलों की तरह, और ए आर शौके साहब की तरह घुमा के क्यों बात करना पड़ गई, कि शैतानी हमजाद समझ में आ जाए। शैतानी हमजाद असल में नफ्स की शक्ल है, और ये बड़े बड़े काम कर दिखाता, कई सूरतें दिखाई देने लगती हैं। तो इंसान इस धोखे में आ जाता है कि मेरा कष्ट जारी हो गया, दर हकीकत ये शैतान बहका रहा होता, वो शैतानी हमजाद है जो बहका रहा है। क्योंकि इंसान के अंदर रहने वाली दो शख्सियतें हैं, एक शख्सियत उसकी पाकीजा है, रहमानी है। जब हम दुनियावी आसाइशों और आलाइशों से दूर होते हैं, और एटलीस्ट उनको हम बुरा समझते हैं दिल में, और अल्लाह के कायम करदा डूज एंड डू नॉट्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उसके पैरामीटर्स जो उसने सेट किए हैं हमारे लिए, हम उन पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तो हमारे जो रूहानियत है, रूह है, उसमें लताफत पैदा होती है, उसमें बालीदगी आती है, उसकी परवाज बढ़ती है। और जूं जूं हमारी रूह लतीफ होगी, बालीदगी के जिस बुलंद मकाम पर होगी, उसकी परवाज उतनी ही ऊंची होगी, उतने ही बुलंदतर जहानों की सैर करेगी वो रूह। और जितनी उसकी लताफत कम होती चली जाएगी, जब हम गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं, आलाइशों में उलझ जाते हैं, तो उसकी लताफत, उसकी बालीदगी, उसकी कसाफत उतनी ही बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा किसी चीज की कसाफत ज्यादा होगी, उतना ही उसका वजन ज्यादा होगा, और जिसका जितना ज्यादा वजन होगा, मास जिसको हम कहते हैं साइंस में, वो उसका उड़ना उतना ही दुश्वार होगा। तो उसकी परवाज रूह की उतनी ही कम हो जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गलबा पाने लगता है नफ्स हम पर, और एक वक्त आता है कि हम पूरी तरह नफ्स के कब्जे में चले जाते हैं। अब इसी बात की रोशनी में अगर हम उस हदीस को देखें, उस रवायत को देखें, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान जब कोई गुनाह करता है और उस पर शर्मिंदा नहीं होता, उसके दिल में कोई कसक पैदा नहीं होती, तो वो नुक्ता काला एक कल्ब पर जम जाता है। और अगर इंसान तौबा न करे और उस पर शर्मिंदा न हो, तो फैलते फैलते पूरे कल्ब पर मोहित हो जाती है स्याही। ये जो मैंने गुजारिश की थी, इससे वो हदीस पूरी तरह वाजे हो जाएगी, फरमान पूरी तरह वाजे हो जाता कि आपने क्या फरमाया था, किस कदर इल्म की बात थी वो। तो यूं हम पे नफ्स अपना गलबा कर लेता है। जब हम पूरी तरह अपने नफ्स के काबू में आ जाते हैं, तो शैतान हम पर हावी है। जहां कहीं हम ये सोचते हैं कि सीधी राह की तरफ निकल जाएं या कोई अच्छी बात देख लें, तो वहां शैतान हमें मुख्तलिफ चीजें दिखाने लगता है, कई सोचें आने लगती हैं बड़ी नादर किस्म की, तो हम ये समझते हैं कि वाह हमें तो कैफ जारी हो गया, हमको तो अलका हो रहा है। वो अलका नहीं हो रहा होता या वो कैफ नहीं होता, वो तो शैतान है जो दिखा रहा है चीजें, जो बहका रहा है हम कहीं सीधे तरफ ना निकल जाए। तो मैंने शायद आप लोगों को एक किस्सा अपना बहुत पुराना वो 22-23 साल की उम्र का उस जमाने का बताया था कि बहुत वजाइफ करता था मैं बेपना, मुर्शद थे नहीं, मिले नहीं थे उन दिनों, मैं सुई गैस मुल्तान में था। तो वहाँ एक वक्त ये आ गया, ये वो दौर था, गालिबन उम्र होगी उस वक्त 22 साल मेरी, तो 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे रात को पढ़ा करता था मैं बगैर किसी गाइडेंस के। मजा ये था कोई बताने वाला नहीं था, खुद ही जो दिल में आया पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक बार वहां गालिबन वीकेंड था, तो मैं दोपहर के वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था, सोच रहा था बस ऐसी रूहानियत की चीजें। तो सडनली मैंने देखा कि दीवार पर एक कुरानी आयत है जो बहुत ही मुझे पसंद थी, अब भी है बहुत पसंद, और बड़ी प्यारी आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। तो मैंने देखा कि ये लिखी हुई आई दीवार पे और मुझे कोई कह रहा है कि इसको पढ़ा करो, पता नहीं ये क्या। उसके बाद ये हो गया कि जहां मैं जरा आंखें बंद करता था तो सामने आ जाती थी कि आयत ये पढ़ो। इत्तफाक ये कि नहीं पढ़ा मैंने उसे, समाउर दी अदर कुछ रह गई, मैं नहीं पढ़ सका उसे। तो 1970 में प्रिंस आगा खान ने मुझे पिक कर लिया, मैं उसके अदारे में चला गया। तो ये इसको मारने का आसान तरीका मैंने आपसे अर्ज किया, शैतानी हमजात से यूं जान छूट जाती कि दिल को खाली कर लीजिए आलाइशों से ताकि उसमें रब आ जाए। तो जिक्र का जो सिलसिला शुरू किया था, देखिए जिक्र की इब्तदा हम करते हैं जुबान से, जिक्र को अदा करते हैं हम अपनी जुबान से, और अगर हम पुरखलूस तरीके पर ये जुबान से जिक्र जारी रखें तो गैर महसूस तरीके पर ये जुबान से शिफ्ट होकर दिल में चला जाता और कल्ब से जिक्र शुरू हो जाता। और फिर भी अगर अल्लाह हमें इस्तकामत दे दे और हम खलूस से कल्ब से जिक्र करते चले जाएं तो ये कल्ब से भी निकल जाता है, और कल्ब में कुर्ब इलाही समा जाता है, और जब कल्ब में कुर्ब इलाही समाता है और हम इस्तकामत से वो जिक्र जारी रखें तो रब तक ले जाता है। लेकिन इब्तदा होगी जुबान ही से, जिस तरह से मुसलमान के लिए मोमिन होने के लिए ये जरूरी है, एक मुसलमान का मोमिन होने के लिए या मुसलमानियत से मोमिन तक का सफर तय करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने हाथ से मेहनत से रोजी कमा कर खाए, ये बुनियाद है उसकी। जो आदमी मेहनत से अपनी रोजी कमा के नहीं खाता वो रूहानियत का सफर तय नहीं कर सकता, ये याद रखिए, ये बुनियादी चीज है कि खुद मेहनत करके मुशक्कत से रोटी खाए, वो एक अलहदा चीज है। इससे अगली है वो बात कि खुद मेहनत करके मेहनत से रोटी खुद भी खाए और दूसरों को भी उसमें हिस्सा दे, तो सफर जल्दी तय होता है, वो बूस्टर रॉकेट का काम करता है। پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہاں انسان روحانیت کے مقام پر آ جائے تو اللہ اسے اس محنت سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے غیب سے کھلاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ زبان سے پہلے اس کا ذکر شروع کیا جائے اور خلوص کے ساتھ، پھر قلب سے شروع ہوگا اور پھر قلب سے اگلی چیز آ جائے گی قرب الہی۔ یہ دونوں سوال بقایا جو ہیں یہ یہی ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ اگلی اتوار کو بشرط زندگی دیں گے۔ سوال یہ ہے، روز محشر تین مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی میزان کا موقع، حساب کتاب کا موقع اور پل صراط سے گزرنے کا موقع، لیکن اس سے قبل بے دین، کافر، گنہگار اور گمراہوں کی روحوں کا برزخ کا سفر دخول قبر سے وادی پرہوت تک مسلسل عذاب میں طے ہوتا ہے۔ روز محشر سے قبل ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو دوں گا، اور شاید اسی کے ذکر کے دوران ہی یہ جو مقامات ہیں، ہوت، لاہوت، ماہوت، ہاہوت، ان کا ذکر بھی آ جائے، اس میں اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی اتوار کو ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔